पृष्ठ संख्या 34 अध्याय 4 मानसिक पराधीनता। हम दैहिक पराधीनता से मुक्त होना तो चाहते हैं, पर मानसिक पराधीनता में अपने आप को स्वेच्छा से जकड़े जा रहे हैं। किसी राष्ट्र या जाति का सबसे बहुमूल्य अंग क्या है? उसकी भाषा, उसकी सभ्यता, उसके विचार, उसका कल्चर। यही कल्चर हिंदू को हिंदू, मुसलमान को मुसलमान और ईसाई को ईसाई बनाए हुए है। मुसलमान इसी कल्चर की रक्षा के लिए हिंदुओं से अलग रहना चाहता है। उसे भय है कि सब मिश्रण से कहीं उसके कल्चर का रूप ही विकृत न हो जाए। इसी तरह हिंदू भी अपने कल्चर की रक्षा करना चाहता है। लेकिन क्या हिंदू और क्या मुसलमान दोनों अपने कल्चर की रक्षा की दुहाई देते हुए भी उसी कल्चर का गला घोटने पर तुले हुए हैं? कल्चर ब्रैकेट में सभ्यता या परिस्कृति ब्रैकेट बंद एक व्यापक शब्द है। हमारे धार्मिक विचार, हमारी सामाजिक रूढ़ियाँ, हमारे राजनैतिक सिद्धांत, हमारी भाषा और साहित्य, हमारा रहन सहन, हमारे आचार विचार एवं व्यवहार सब हमारे कल्चर के अंग हैं। पर आज हम कितनी बेदर्दी से इसी कल्चर की जड़ काट रहे हैं। पश्चिम वालों को शक्तिशाली देखकर हम इस भ्रम में पड़ गए हैं कि हम में सिर से पांव तक दोष ही दोष है और उनमें सिर से पांव तक गुण ही गुण है। इस अंधभक्ति में हमें उनके दोष भी गुण मालूम होते हैं और अपने गुण भी दोष। भाषा ही को ले लीजिए। आज अंग्रेजी हमारे सभ्य समाज की व्यवहारिक भाषा बनी हुई है। सरकारी भाषा तो वह है ही, दफ्तरों में तो अंग्रेजी में काम करना ही पड़ता है, पर उस भाषा की सत्ता के हम ऐसे भक्त हो गए हैं कि निजी चिट्ठियों में, घर की बातचीत में भी उसी भाषा का आश्रय लेते हैं। स्त्री पुरुष को अंग्रेजी में पत्र लिखती है, पिता पुत्र को अंग्रेजी में पत्र लिखता है, दो मित्र मिलते हैं तो अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं, कोई सभा होती है तो अंग्रेजी में, डायरी अंग्रेजी में लिखी जाती है। वाह क्या भाषा है, क्या लोच है, कितनी मार्मिकता है, विचारों की व्यंजित करने की कितनी शक्ति, शब्द भंडार कितना विशाल, साहित्य कितना बहुमूल्य, कितना परिष्कृत, कविता कितनी मर्म स्पर्शनी, गद्य कितना अर्थबोधक, जिसे देखो अंग्रेजी जबान पर लट्टू, उसके नाम पर कुर्बान है। यहाँ तक कि हमारी योग्यता और विद्वत्ता की यही एक परख हो गई है कि हम अंग्रेजी बोलने या लिखने में कितने कुशल हैं। 8वीं क्लास से अंग्रेजी के मुहावरों की रटन शुरू हो जाती है, पर्याय के सूक्ष्म अर्थ भेद पर विचार होने लगता है। अपनी अंग्रेजी वक्तृता में अंग्रेजी का एक्सेंट और उच्चारण कैसे लाएं, इस प्रयत्न में जान खपा दी जाती है। अगर किसी स्वर का उच्चारण अंग्रेजी से उनके मौखिक गठन के दोषों के कारण नहीं होता तो हम भी अपने में वही बात पैदा करेंगे। पृष्ठ संख्या 35। आज तक द जैसे साधारण शब्द का भी ठीक उच्चारण, जो अंग्रेजों को भी जचे, बहुत कम लोग कर सकते हैं और हमारी यह मनोवृत्ति राष्ट्रीय भाव के साथ ही साथ बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि अंग्रेजी ही पठित समाज की भाषा बन गई है। हमारी भाषा में बातचीत करते समय कभी कभी एकाध अंग्रेजी शब्द आ जाने को तो हम मुआफी के काबिल समझते हैं। लेकिन दुख तो यह है कि ऐसे सज्जनों की भी कमी नहीं है जो बहुत थोड़ी सी अंग्रेजी जानकर भी अंग्रेजी में ही अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी स्वप्न में भी किसी अंग्रेज से गैर अंग्रेजी भाषा में न बोलेगा, मगर यहाँ हम आपस में ही अंग्रेजी बोलकर अपनी मानसिकता दास्ता का ढिंढोरा पीटते हैं। मैं उस मनोवृत्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता जो एक ही भाषा भाषियों को अंग्रेजी में बात करने की प्रेरणा करती है। किसी मद्रासी, बंगाली या चीनी से तो अंग्रेजी में बातें करने का कोई अर्थ हो सकता है, उनसे बातें करनी जरूरी है। और इस वक्त और कोई ऐसी भारतीय भाषा नहीं जिसका सभी प्रांत वालों का एक सा ज्ञान हो, मगर एक ही प्रांत के रहने वाले, एक ही भाषा के बोलने वाले क्यों आपस में अंग्रेजी बोले, क्यों अंग्रेजी में पत्र लिखे, क्यों प्रणाम या नमस्कार या वंदे या नमस्ते या तस्लीम करने के बदले मॉर्निंग मॉर्निंग कहे, यह मेरी समझ में नहीं आता। क्यों हेलो ही मुँह से निकले, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। संसार में ऐसे प्राणियों की कमी नहीं है जो मंगनी की चीजों का व्यवहार करके भी सिर उठाकर चलते हैं। उन्हें यही खुशी है कि लोग मुझे इन चीजों का स्वामी समझते होंगे। अंग्रेजी का व्यवहार करने वालों की मनोवृत्ति भी कुछ इसी तरह की होती है। या तो उनका अभिप्राय यह होता है कि देखे हम दोनों में कौन अच्छी अंग्रेजी बोलता है, या यह कि देखो हम जितनी सफाई से अंग्रेजी बोलते हैं तुम में वह सफाई नहीं है, और इसका परिणाम यह होता है कि अच्छी अंग्रेजी लिखनी और बोलनी तो आ जाती है पर अपनी भाषा भूल जाती है या हेय और तुच्छ समझकर भुला दी जाती है। यह हमारे शिक्षित समुदाय की लज्जाजनक ही नहीं शोकजनक मानसिक दास्ता है। फ्रांसीसी कवि फ्रेंच में कविता करता है, जर्मन जर्मन में, रूसी रशियन में, कम से कम जिन रचनाओं पर उसे गर्व होता है वह अपनी ही भाषा में करता है। लेकिन हमारे यहाँ के सारे कवि और लेखक अंग्रेजी में लिखने लगे, अगर केवल कोई प्रकाशक उनकी रचनाओं को छापने पर तैयार हो जाए, जिन्हें प्रकाशक मिल जाते हैं वह चूकते भी नहीं, चाहे अंग्रेजी आलोचक उनका मजाक ही क्यों ना उड़ाएं, मगर वह खुश हैं। हम मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा प्रौण है, हर एक प्रकार के भाव को आसानी से जाहिर कर सकती है और भारतीय भाषाओं में अभी वह बात नहीं आई। लेकिन जब वही लोग जिन पर भाषा के निर्माण और विकास का दायित्व है दूसरी भाषा के उपासक हो जावे तो उनकी अपनी भाषा का भविष्य भी शून्य हो जाता है। फिर क्या विदेशी साहित्य की नींव पर आप भारतीय राष्ट्रीयता की दीवार खड़ी करेंगे। पृष्ठ संख्या 36। यह हिमाकत है, आज हमारा पठित समाज साधारण जनता से पृथक हो गया है। उसका रहन सहन, उसकी बोलचाल, उसकी वेशभूषा सभी उसे साधारण समाज से अलग कर रहे हैं। शायद वह अपने दिल में फूला नहीं समाता कि हम कितने विशिष्ट हैं। शायद वह जनता को नीच और गवार समझता है, लेकिन वह खुद जनता की नजरों से गिर गया है। जनता उससे प्रभावित नहीं है, उसे किरणटा या बिग डेल या साहब बहादुर कहकर उसका बहिष्कार करती है। और आज खुदा न खास्ता वह किसी अंग्रेज के हाथों पिट रहा हो तो लोग उसकी दुर्गति का मजा उठावेंगे, कोई उसके पास भी न फटकेगा। जरा इस गुलामी को देखिए कि हमारे विद्यालयों में हिंदी या उर्दू भी अंग्रेजी द्वारा पढ़ाई जाती है। अगर बेचारा हिंदी प्रोफेसर अंग्रेजी में लेक्चर न दे तो छात्र उसे नालायक समझते हैं। आदमी के मुख में कलंक लग जाए तो वह शर्माता है, उस कलंक को छिपाता है, कम से कम उस पर गर्व नहीं करता। पर हम अपनी दास्ता के कलंक को दिखाते फिरते हैं, उसकी नुमाइश करते हैं, उस पर अभिमान करते हैं, मानो वह नेक नामी का तमंगा हो या हमारी कीर्ति की ध्वजा। वह री भारतीय दास्ता तेरी बलिहारी है। भाषा छोड़िए, वेशभूषा पर आइए। आप उन साहब बहादुर को देख रहे हैं जो हैट केट लगाए गुरूर से इधर उधर देखते चले जा रहे हैं। यह हमारे हिंदुस्तानी यूरोपियन हैं। रास्ते से हट जाओ, साहब बहादुर आते हैं। साहब बहादुर को सलाम करो, आप पूरे साहब बहादुर हैं। मुझे तो आप सिर से पांव तक गुलाम नजर आते हैं, जो अपनी गुलामी का उसी बेशर्मी से प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे कोई वेश्या अपने हाव भाव का। आप में आत्म बल अवश्य है, बड़े ऊंचे दर्जे का आत्म गौरव। आप लोक मत को ठुकरा देते हैं, किसी के नाक भाव सिकोड़ने की परवाह नहीं करते। जो अपने स्वार्थ के लिए उपयोगी या अपनी मनोतुष्टि के लिए वांछनीय समझते हैं वह अवाध्य रूप से करते हैं। क्यों लोक मत का आदर करें, लोक मत के गुलाम नहीं। लेकिन उसी आत्म गौरव के पुतले से कहिए कि जरा शाम को बिना फ्लैट कैप लगाए किसी अंग्रेजी क्लब में चला जाए तो उसके हाथ पांव फूल जाएंगे, खून ठंडा हो जाएगा, चेहरा फक हो जाएगा। क्यों? इसीलिए कि उसका आत्मगौरव केवल अपने भाइयों पर रौब जमाने के लिए है, उसमें सार का नाम नहीं। वह जिस समाज में मिलना चाहता है उसकी छोटी से छोटी रूढ़ियों की भी अवहेलना नहीं कर सकता। जनता को वह समझता है, हमारा कर ही क्या लेगी। वह खुश रहे तो क्या, वह नाराज रहे तो क्या, यह हमारा कुछ बना बिगाड़ नहीं सकती। जिनसे कुछ बनने बिगड़ने का भय है उनके सामने वह भीगी बिल्ली बन जाता है। अपने एक मित्र साहब बहादुर से मैंने पूछा, तुम इस ठाट से क्यों रहते हो? तो बड़े दार्शनिक भाव से बोले, इसीलिए कि अंग्रेज से मिलने जाता हूँ तो जूते बाहर नहीं उतारने पड़ते। जो लोग अचकन और टोपी पहनकर जाते हैं उन्हें जूते उतार देने पड़ते हैं। मैं कहता हूँ जो स्वार्थ लेकर अंग्रेजों से मिलने नहीं जाते वह अचकन नहीं मिजई भी पहने हो तो उन्हें जूते उतारने की जरूरत नहीं। और जो स्वार्थ लेकर जाते हैं वह किसी वेश में हो उनकी आत्मा दबी रहती है। पृष्ठ संख्या 37। ऐसे प्राणियों की दशा उस आदमी की सी है जो अपने कपड़े पर एक दाग को छिपाने के लिए सारा कपड़ा ही काला रंग ले। अगर स्वार्थ मजबूर कर रहा हो तो मेरे विचार में तो जूते उतार देना इससे कहीं अच्छा है कि हम उस अपमान से बचने के लिए बेहयाई का एक अपराध और अपने सिर पर ले ले। यह मत समझो कि अंग्रेज तुम्हारा कोट पैंट देखकर तुम्हारा मेरा ज्यादा आदर करता है, और अगर ऐसा हो भी तो अपना वेश छोड़कर उस आदर को लेना, एक प्याले शौरबे के लिए अपने जन्मसिद्ध गौरव को बेचना है। एक दूसरे मित्र से यही प्रश्न किया तो बोले, इससे सफर करने में बड़ा सुविधा होता है, जनता समझती है यह कोई साहब है, मेरे डिब्बे में नहीं आती। एक और साहब ने कहा, अंग्रेजी कपड़े पहनने से देह में बड़ी चुस्ती और फुर्ती आ जाती है, गरज लोग तरह तरह की दलीलों से अपना समाधान कर देंगे। मैं पूछता हूँ, क्यों साहब, क्या सारी चुस्ती और फुर्ती अंग्रेजी कपड़ों में ही है? क्या यह कोई तिलस्माती चीज है कि बदन पर आई और आपकी देह में स्फूर्ति दौड़ी? यह दलीलें लगो और लचर है। हाँ, इस तर्क में अवश्य सार है कि जब सारा संसार यूरोपीय वेश के पीछे जा रहा है तो आप उससे अलग कैसे रह सकते हैं? दूसरी दलील यह हो सकती है कि हमारा कोई जातीय परिधान भी तो नहीं है, भिन्न भिन्न प्रांतीय परिधानों की अपेक्षा तो एक सर्वदेशीय यूरोपियन परिधान का होना कहीं अच्छा है। बेशक यह टेढ़ा प्रश्न है, यह बात भी विचारणीय है कि अन्य देशों में अमीर गरीब सबका पहनावा एक ही है, चाहे उसके कपड़े में कितना ही अंतर हो। आपके यहाँ किसान मिजई या नीम आस्तीन या कुर्ता धोती पहनता है, कहीं सलवार है, कहीं पगड़ी, कहीं जंघिया। पहले एक जातीय ठाठ की सृष्टि तो कर लीजिए, फिर विलायती पहनावे पर आक्षेप कीजिएगा। भाषा ही की भांति एक जातीय पहनावा भी बरसों के बाद कहीं जाकर आविर्भूत होता है, किसी संस्था या नीति द्वारा उसकी सृष्टि नहीं की जा सकती। अभी भारत को एक सर्वदेशीय परिधान के लिए बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, मगर जब तक वह समय नहीं आता तब तक के लिए हमारे विचार में इस नीति को सामने रखना चाहिए कि यथासाध्य जन रुचि का सम्मान किया जाए। अगर किसी प्रांत में जनता कोट पहनती है तो वहाँ के लिए कोट पतलून ही उपयुक्त है। इसी भांति जिन प्रांतों में साधारण जनता कुर्ता और धोती पहनती है, वहाँ कुर्ता और धोती को ही जातीय परिधान के पद पर सम्मानित करना चाहिए। अभिप्राय केवल यह है कि शिक्षित समाज केवल अपनी विशिष्टता या प्रभुत्व जताने के लिए ऐसी वेशभूषा का व्यवहार न करे जिसमें विदेशीपन की झलक आती हो। हो सकता है कि कुछ लोगों को अंग्रेजी वेश में रहने पर भी जरा अभिमान या स्वार्थ सिद्धि की भावना न हो, पर दुर्भाग्यवश यह विदेशी वेश जनता की आंखों में खटकता है, और इसे धारण करने वाले चाहे देवता ही क्यों न हो, वे स्वजाति के द्रोही और शासक जाति के अनन्य भक्त के रूप में नजर आते हैं। पृष्ठ संख्या 38। संभव है स्वाधीन हो जाने पर यही हमारा स्वजातीय वेश हो जाए, लेकिन तब इसमें वह कुसंस्कार न रहेंगे जिन्होंने इस वक्त इसे इतना अवहेलनीय बना रखा है। जरा सोचिए, क्या यह एक पढ़े लिखे व्यक्ति को शोभा देता है कि वह अपना रहन सहन ऐसा बना ले कि जनता उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखने के बदले घृणा या भय की दृष्टि से देखे। किसी समय जन रुचि को पद दलित करने का नतीजा बुरा भी हो सकता है, और यह तो स्पष्ट ही है कि अगर जनता के हाथों में प्रभुत्व होता तो बहुत से अंग्रेजी वेश के प्रेमी यह वेश धारण करने से पहले ज्यादा विचार से काम लेना आवश्यक समझते, मगर हमारी यह मनोवृत्ति भाषा और वेश तक ही रहती है तो अधिक चिंता की बात नहीं थी। इसने हमारे कितने और सामाजिक विचारों पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया है, और अभी से रोकथाम न की गई तो एक दिन हमारी जातीय संस्कृति का ही लोप हो जाएगा। यह एक साधारण सी बात है कि पराधीन जाति को अपने में सारी बुराइयां और राज्य करने वाली जातियों में भलाइयां ही भलाइयां नजर आती हैं। हमारी सभ्यता कहती है, अपनी जरूरतों को मत बढ़ाओ ताकि तुम्हारी जात से कुटुंब और परिवार का भी कुछ उपकार हो। पश्चिमी सभ्यता का आदर्श है, अपनी जरूरतों को खूब बढ़ाओ, चाहे उसके लिए दूसरों की जेब ही क्यों ना काटनी पड़े। अपने ही लिए जियो और अपने ही लिए मरो। हमारी सभ्यता कृषि प्रधान थी, हम गाँव में रहते थे जहाँ अपने आत्मीय जनों का संसर्ग बहुत सी बुराइयों से हमारी रक्षा करता था। पश्चिमी सभ्यता व्यवसाय प्रधान है और बड़े बड़े नगरों का निर्माण करती है जहां हम सारे बंधनों से मुक्त होकर दुराचरण में पड़ जाते हैं। हमारी सभ्यता में सम्मिलित कुटुंब एक प्रधान अंग था। पश्चिमी सभ्यता में परिवार का अर्थ अर्थ है केवल स्त्री और पुरुष, दोनों में बुराइयां और भलाइयां दोनों ही हैं, पर जहां एक में सेवा और त्याग प्रधान है वहां दूसरे में स्वार्थ और संकीर्णता। हमारी सभ्यता में नम्रता का बड़ा महत्व था, हमारी सभ्यता में आत्म प्रशंसा को वही स्थान प्राप्त है। अपने को खूब सहारो, अपने मुँह खूब मियाँ मिट्ठू बनो। हमारी सभ्यता में धन का स्थान गौण था, विद्या और आचरण से आदर मिलता था। पश्चिमी सभ्यता में धन ही मुख्य वस्तु है, हम भी धन कमाते हैं पर दया के साथ। पश्चिम भी धन कमाता है पर दया का नाम नहीं। हमारी सभ्यता का आधार धर्म था, पश्चिमी सभ्यता का आधार संघर्ष है। लेकिन यहाँ हम अपने सद्गुणों की प्रशंसा नहीं करने बैठे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि हमें हर एक पश्चिमी चीज के पीछे आंखें बंद करके चलने की जो प्रवृत्ति हो रही है वह केवल हमारी मानसिक पराजय के कारण। हमारी सभ्यता में जो भी रोग थे मगर उसकी दवा यूरोपीय सभ्यता की अंधभक्ति नहीं है, उसकी दवा हमें अपनी ही संस्कृति में खोजनी थी। यूरोपीय सभ्यता की नकल करके हमें अपने यहाँ भी उन्हीं दवाओं का व्यवहार करना पड़ेगा जो यूरोप कर रहा है। यूरोप पथ भ्रष्ट है, उसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं। और आज यूरोप के विचारवान लोग कह रहे हैं कि यह संस्कृति अब विध्वंस के गर्त में जाने वाली है। पृष्ठ संख्या 39। क्या हम भी उन्हीं बुराइयों की नकल करके अपनी संस्कृति को भी विध्वंस के गर्त में ढकेलने की तैयारी करें? यह समझ लीजिए कि यह राजनीतिक परिस्थिति नहीं रहेगी, पर इस परिस्थिति में हमने अपने अस्तित्व को खो दिया, अपने धर्म की सत्ता खो दी, अपनी संस्कृति को खो बैठे तो हमारा अंत हो जाएगा। जनवरी 1931।